हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 30। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। कृष्णातदीय पद पंकज पंचरांतम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त, यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात होना द्रपुलिंद पुलकशा, आभीर शुंभा यवना खसादया, येनीच पापा यदपाश्रयाश्रया, शुद्ध्यंति तस्मे प्रभविष्णवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 30। अभी सुखदेव गोस्वामी योगी जन अपने प्राणों को किस प्रकार से त्यागते हैं और किस प्रकार से अपने समस्त सूक्ष्म स्थूल शरीर की पहचान से सूक्ष्म में किस तरह से प्रवेश करते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा कि वो कर्मशः वह भूमि से जल, अग्नि जल अग्नि तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था तक पहुंचता है और उसके उपरांत इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने की सुगंध को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को और आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। इस तरह से आगे जाने के बाद वो किस तरह से, जैसे उसने पंचभूत की सूक्ष्म स्थूल धारणा को पार कर लिया पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, आगे जाने के बाद मन बुद्धि अहंकार, वो किस तरह से अहंकार की स्थिति में आकर पहुंचता है और स्थूल और सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है और जो भी है ना रजोगुण और तमोगुण जो भौतिक गुण हैं उनसे बिल्कुल उदासीन हो जाता है और इस तरह से तमोगुण में सत्वगुणी अहंकार, तमोगुण और रजोगुण खत्म करने के बाद सत्वगुणी अहंकार को प्राप्त करता है और उसके पश्चात सारा अहंकार भी उसका महतत्व में लीन हो जाता है और वो वास्तविक शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक पहुंचता है। उसके विषय में यहां पर बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाध्य गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्त्वम गुण सन्निरोधम। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाध्य गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्त्वम गुण सन्निरोधम। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाध्य गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्त्वम गुण सन्निरोधम। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम, समना वो जो योगी है या भक्त जो भी है जो ये अभ्यास कर रहा है, भूत यानी स्थूल सूक्ष्म तथा सूक्ष्म इंद्रिय सन्निकर्षम समस्त इंद्रियों से उदासीन हो जाता है, मनोमयम देवमयम, मनोमयम मतलब मानसिक स्तर से और देवमयम मतलब सत्वगुण में विकार्यम यानी अहंकार, जो मानसिक स्तर से आगे आकर सत्वगुणी अहंकार को प्राप्त करता है, संसाध्य गत्या और उसको भी पार करके सहतेन यति और वो और आगे जाता है विज्ञान तत्वम पूर्ण ज्ञान, तत्व मानी सत्य गुण सत्योगुण में सन्निरोधम पूर्ण रूप से अवरोध हो जाता है। अनुवाद देखिए, इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म धारणाओं आवरण को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है, उस अवस्था में वह भौतिक गुण रजो तथा तमोगुण को इस उदासीन बिंदु में लीन कर देता है और इस तरह वह सत्वगुणी अहंकार को प्राप्त होता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महातत्व में लीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक आता है। तो यहां पर एक योगी किस तरह से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है उसकी विधि बताई गई है, लेकिन ये जो योगाभ्यास है वो उस समय, जैसे आज से 5000 साल पहले ये भागवतम लिखा गया, उस समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल और सुगम था क्योंकि हर कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन करता था। पहले जीवन के प्रारंभ में प्रत्येक जितने भी संतान होते थे उनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानपर। तो योगाभ्यास इतना कठिन नहीं होता था और योगाभ्यास करने का एक ही लक्ष्य होता था कि किस तरह से भौतिक आवरणों को पार करके आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा जाए। लेकिन आज के मनुष्य की मानसिकता इतनी दूषित हो गई है कि योगाभ्यास का मतलब उनको ये नहीं लगता कि हमें भगवत प्राप्ति के लिए ये करना है, बल्कि क्या लगता है कि शायद भौतिक इंद्रियों को अधिक से अधिक तुष्ट करने का ये एक साधन है, और उस योगाभ्यास के द्वारा वो कभी भी आत्म साक्षात्कार तक नहीं पहुंचते हैं, बल्कि बीच में ही किसी सिद्धि में अटक जाते हैं और वो समझते हैं कि यही पूर्णता है। तो मेन पर्पज ये है कि आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा जाए। अंतिम बिंदु क्या है कि वास्तविक में अपनी पहचान में आत्म साक्षात्कार मतलब मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं और मुझे क्या कार्य करना है। जब ये आप जीव को रियलाइज हो जाता है तो वो कौन से तरीके से हुआ, वो तरीका इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि वो लक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वो लक्ष्य आज योगाभ्यास इस युग में योगाभ्यास को कभी भी है ना इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। शास्त्रों में हमारे इस कलयुग के लिए एक ही विधि बताई गई है आत्म साक्षात्कार के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए, और वो है संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि इस युग में भगवान को प्राप्त करने का वास्तविक लक्ष्य को गोल को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलैव नास्ति वनास्ति वनास्ति गतिरन्यथा। तो क्योंकि वो जो बाकी विद्या है वो हमारे लिए इतनी सुगम नहीं है, इसलिए श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से हमें इस श्लोक को बताएंगे कि हमारे लिए ये किस तरह से प्रैक्टिकल हो सकता है कि हम अपने आत्म साक्षात्कार तक पहुंचे, और किस तरह से हमारे हृदय में जो भक्ति का बीज जो गुरु और कृष्ण की कृपा से उत्पन्न हुआ है उस बीज में से किस तरह से हम उसको जल से सिंचन करें, श्रवण और कीर्तन के जल को सिंचन करके उस बीज में से जो बेल निकलेगी भक्ति की, उसमें से जो भक्ति का पुष्प निकलेगा वो भगवान के चरणों तक किस तरह से पहुंचाए, अत्यंत ही सुंदर रीति से श्रील प्रभुपाद जी हमें बताएंगे। हम सब ध्यान से श्रील प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य को पढ़ेंगे और अपने जीवन में प्रैक्टिकल इसको उतारने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि शुद्ध आत्म साक्षात्कार अपने आप को भगवान के सनातन दास के रूप में स्वीकार करने की शुद्ध चेतना है। आत्म साक्षात्कार क्या है? मैं भगवान का दास हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी है और मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति। तो आत्म साक्षात्कार यही है। इस तरह मनुष्य भगवान को की दिव्य प्रेममयी सेवा की अपनी मूल स्थिति में पुनः स्थापित हो जाता है, जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट बताया जाएगा। अब यहां पर पहले योगाभ्यास के द्वारा आत्म साक्षात्कार बताया जा रहा है और आगे जाकर भक्ति योग के द्वारा ही बताया जाएगा। अभी क्या है, श्री प्रभुपाद जी को आगे का भी पता है कि आगे जाकर इसी भक्ति योगा की विधि को ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी, सरल बताया जाएगा, तो उनको पता है, वो सस्पेंस खोल देते हैं पहले से ही, क्योंकि हमारे जैसे बुद्धिहीन व्यक्ति को पता है, उनको वो जानते हैं कि ये सब उनके बस की बात नहीं है, तो पहले से ही बता देते हैं कि आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, आगे जाके बताया जाएगा स्पष्ट कि आपको क्या करना है। भगवान से किसी प्रकार का पारिश्रमिक पाए बिना या अन्य रूप में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करने की यह अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब भौतिक इंद्रियां शुद्ध हों तथा इंद्रियों की मूल शुद्ध अवस्था पुनः प्राप्त हो जाए। यहां पर यह सुझाया गया है कि इंद्रियों को योग के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। इसमें स्थूल इंद्रियां तमोगुण में लीन हो जाती है और सूक्ष्म इंद्रियां रजोगुण में। मन का संबंध सत्वगुण से होता है, अतएव यह देवमय कहलाता है। मन की पूर्ण शुद्धि तभी संभव हो पाती है जब मनुष्य भगवान का सनातन दास बनने की धारणा में स्थित हो जाए। अतएव सत्व की कोरी उपलब्धि भी भौतिक गुण है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि ठीक है, रजोगुण और तमोगुण से आप आगे निकल आओगे, लेकिन यदि केवल सत्वगुण में आकर बैठ जाओगे, सत्वगुण की उपलब्धि भी हो जाएगी, तो सत्वगुण भी तो भौतिक गुण ही है ना। तो फिर भौतिक गुण के अंदर ही हो आप सत्वगुण में, आपको सत्वगुण से ऊपर निकलना है। इन तीनों, ये तीनों गुण बांधने वाले भगवान बताते हैं भगवत गीता में, सत्वम सुखम संजयते रजह कर्माणि भारत। तो सत्वगुण भी सुख से बांध देता है, रजो कर्म से बांध देता है, और प्रमाद आलस्य से तमोगुण बांध देता है। तो उससे ऊपर उठना है मनुष्य को, सत्व की या भौतिक अवस्था पार करके शुद्ध सत्व या वसुदेव सत्व तक पहुंचना होता है। यह वसुदेव सत्व मनुष्य को भगवत धाम में प्रविष्ट कराने में सहायक होता है। यानी कि हमें ये जानना है कि तीनों गुण तो भौतिक स्थिति में मुझ पर असर करते हैं, लेकिन मैं वास्तव में भौतिक सृष्टि का अंग नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं, मेरा संबंध भगवान के साथ है। और जब हम अपना संबंध भगवान के साथ पुनः निर्माण करते हैं तो इन भौतिक गुणों से बहुत आगे निकल जाते हैं, शुद्ध सत्व में आ जाते हैं। और यही शुद्ध सत्व भाव हमें भगवत धाम में प्रविष्ट कराने में सहायक होता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस प्रसंग में हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि भक्तों के द्वारा क्रमिक उत्थान की उपर्युक्त विधि यद्यपि प्रमाणिक है, किंतु वर्तमान युग के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि लोग योग अभ्यास से मूलतः अनजान है। अभी जो उपर्युक्त ये जो बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि किस तरह से योगाभ्यास करते हुए सारे योग गुणों से ऊपर उठकर अहंकार, सत्वगुण और अहंकार में स्थित होना, वैसे तो ये प्रमाणिक विधि है, लेकिन वर्तमान युग के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि लोग योग अभ्यास से मूलतः अनजान है, उन्हें पता ही नहीं है योग अभ्यास के बारे में। व्यवसायिक समर्थकों द्वारा तथाकथित योग अभ्यास भले ही शारीरिक क्रियाओं के लिए लाभ प्राप्त हो, किंतु छोटी सी सफलता यहाँ पर वर्णित आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति में सहायक नहीं बन सकती। क्या करते हैं जो व्यवसायिक समर्थक जो होते हैं, बस कारोबार की तरह योग अभ्यास करते हैं और शारीरिक क्रियाओं के कोई है ना बेहतर बनाते हैं, लेकिन ये सब जो है यहाँ पर लिखी हुई जो बहुत ही ऊंची कोटि की सफलता है उसके लिए ना ये उपयोगी नहीं है। यहाँ पर जो आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति है उसके लिए ये सब सहायक नहीं है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, 5000 वर्ष पूर्व जब मानव समाज का स्तर पूर्ण रूप से वैदिक व्यवस्था के अनुसार था, तब यहाँ पर वर्णित योग विधि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामान्य बात थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष रूप से ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को घर से दूर रहकर ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के संरक्षण में दिव्य कला में प्रशिक्षित किया जाता था, किंतु आधुनिक मनुष्य उसे ठीक से समझ पाने में अक्षम है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य ने इस युग से के भावी भक्तों के लिए इसे निम्नलिखित विधि से अत्यंत सुगम बना दिया है। अंतिम प्राप्त होने वाले फल में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सबसे प्रथम और मुख्य बात तो यह है कि मनुष्य को भक्ति योग की मूल महत्ता को समझना चाहिए। सारे जीव अपने अपने कर्मों तथा कर्म फलों के अनुसार विविध योनियों में विभिन्न प्रकार के बंधनों का भोग कर रहे हैं, किंतु विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के दौरान जो व्यक्ति भक्ति में थोड़ा उन्नत हो जाता है वह भगवान तथा गुरु की अहितुकी कृपा से भगवान की सेवा में की महत्ता को समझ सकता है। भगवान निष्ठावान व्यक्ति की सहायता गुरु से उसकी भेंट करा कर करते हैं। भगवान जब हम जब थोड़ी सी भी भगवान की सेवा करते हैं ना, तो भगवान हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान की प्रसन्नता जानते हो कब पता चलती है? कि भगवान हमसे प्रसन्न हो गए हैं। यदि हम शुद्ध हृदय से भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान अवश्य हमें किसी शुद्ध गुरु के पास भेजेंगे, किसी शुद्ध गुरु के साथ हमारी भेंट करा देंगे। वो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि वह शुद्ध गुरु हमें भगवान तक पहुंचाएगा। भगवान की प्राप्ति कराने के लिए शुद्ध गुरु की बहुत बहुत आवश्यकता होती है, और ये भगवान की प्रथम कृपा होती है। इस संसार में भौतिक वस्तुएं प्राप्त करना कोई कृपा नहीं है। भौतिक वस्तुएं तो यहीं पर रह जाएंगी और हमारे दुख का कारण बनेंगी, लेकिन जब एक शुद्ध वैष्णव हमें प्राप्त हो जाते हैं जो हमें शुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं, तो वो सबसे बड़ी कृपा है भगवान की। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान निष्ठावान व्यक्ति की सहायता गुरु से उसकी भेंट करा कर करते हैं, जो भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे गुरु के उपदेश से मनुष्य को भक्ति योग का बीज प्राप्त होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भक्त अपने हृदय में भक्ति का बीज बोए और भगवान के पवित्र नाम तथा महिमा के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा उसे सींच कर पल्लवित करे। ब्रह्मांड भ्रमियते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाई भक्ति लता बीज। माली हना करे सही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन न जले करे रे सिंचन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जब गुरु और कृष्ण की कृपा से आपको भक्ति लता का बीज प्राप्त हो, तो श्रवण और कीर्तन के जल से उसे सींचना चाहिए। अपराध रहित होकर भगवान के पवित्र नाम के श्रवण तथा कीर्तन की यह सरल विधि धीरे धीरे मनुष्य को मोक्ष की अवस्था तक पहुंचा देगी। भगवान के पवित्र नाम कीर्तन की तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था भगवान नाम का अपराध के साथ कीर्तन करना, दूसरी अवस्था भगवान पवित्र नाम के कीर्तन की आभास अवस्था, और तीसरी अवस्था है अपराध रहित भगवान नाम का कीर्तन करना। दूसरी अवस्था में ही जो के अपराध सहित तथा निरपराध के बीच की अवस्था होती है, मनुष्य स्वतः मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस निरपराध अवस्था में ही मनुष्य वास्तव में भगवत्ता में प्रवेश करता है। यद्यपि शारीरिक रूप से बाह्य दृष्टि से वह भौतिक जगत में प्रतीत होता है, निरपराध अवस्था प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित प्रकार से सतर्क रहना चाहिए। तो यहाँ पर तीन प्रकार के जप बताए गए हैं। एक है अपराध, नाम अपराध है ना, 10 नाम अपराध, कुछ लोग उनके सहित जप करते हैं, कुछ भक्तों की निंदा करते हैं, गुरु आज्ञा की अवहेलना करते हैं, नाम जप करने में सतर्क नहीं रहते, या वैदिक शास्त्रों का खंडन करते हैं, या कुछ इस तरह के पवित्र नाम को वो वैदिक कर्मकांड के समान समझते हैं, तो इस तरह से जो कार्य करते हैं वो अपराध वाला नाम होता है। लेकिन कुछ ऐसे उससे भी बढ़कर होते हैं जो नाम आभास यानी अपराध तो नहीं करते, लेकिन शुद्ध नाम का जो वास्तविक स्वाद होता है वो उनको पता नहीं चलता, वो नाम आभास होता है। लेकिन जब उनको शुद्ध नाम का वास्तविक अर्थ पता चल जाता है, वास्तविक उसके अंदर प्रेम कब की प्रगाढ़ता आ जाती है, जब नाम लेते हुए ही जो रोमांच होने लगता है, हृदय गदगदित होने लगता है, अश्रुपात होने लगता है, वो जो शुद्ध नाम है वो उसकी शुद्ध अवस्था है। तो जब इस तरह से निरपराध अवस्था पार करके जब हम नाम जप करते हैं, तो यद्यपि शारीरिक रूप से बाह्य दृष्टि से वह भौतिक जगत में होता है, लेकिन फिर भी वो भगवत धाम में प्रवेश होता है। वास्तव में यही आनंद जो है वो उसी आनंद की उपलब्धि करता है। आगे श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से श्रवण और कीर्तन के अर्थ को बताते हैं कि जब हम श्रवण तथा कीर्तन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय केवल भगवान के रामकृष्ण नामों के कीर्तन तथा श्रवण यानी 16 नामों हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का क्रम बंद कीर्तन से ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि श्रवण कीर्तन का मतलब है बस खाली आप महामंत्र को जप करते रहो और कुछ नहीं करता, अपितु भक्तों की संगति में रहकर श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम को पढ़ना और सुनना भी इसमें सम्मिलित है। भक्ति योग के प्रारंभिक अभ्यास से हृदय में पहले से बोया हुआ बीज अंकुरित हो उठेगा और जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है नियमित सिंचाई करने से भक्ति योग की लता बढ़ने लगेगी। सुव्यवस्थित रूप से पालन पोषण करने से यह लता इस हद तक बढ़ जाएगी कि यह ब्रह्मांड के आवरणों को भेद करके जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में सुना है तेजोमय आकाश या ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाएगी और आगे बढ़ती हुई आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाएगी जहां वैकुंठ लोक कहलाने वाले असंख्य आध्यात्मिक ग्रह स्थित है। इन सब के ऊपर कृष्ण लोक या गौलोक वृंदावन धाम है जहां यह लता प्रविष्ट होकर आदि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करेगी। जब मनुष्य गौलोक वृंदावन में स्थित भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाता है तब श्रवण तथा वाचक की संचित विधि तथा पवित्र नाम की कीर्तन विधि फलीभूत होती है और भगवत प्रेम रूपी जो फल लगते हैं वे भक्तों द्वारा व्यावहारिक रूप से आस्वाद्य होते हैं भले ही वे इस लोक में रह रहे हों। भगवत प्रेम रूपी पक्व फल का आस्वादन वे ही भक्त कर पाते हैं जो निरंतर सिंचन कार्यों में लगे रहते हैं जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। अत्यंत ही सुंदर दृष्टांत श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि जैसे जैसे हम अपनी भक्ति रता के इस बीज को हृदय में बोकर श्रवण और कीर्तन के जल से सिंचन करते हैं तो ये लता सारे आवरणों को तो पार करके भेद करके सत्यलोक से ऊपर वैकुंठ लोक में और वैकुंठ लोकों से भी ऊपर गौलोक वृंदावन धाम में स्थित भगवान के श्री चरणों तक पहुंचती है और तब जो आस्वादन होता है वो केवल वही भक्त समझ सकता है जिसको यह आस्वादन हो रहा है जिसको यह आनंद आ रहा है। वो इस भौतिक जगत में रहता है परंतु फिर भी उसको आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार हो रहा होता है। वो शब्दों की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर शब्द समाप्त हो जाते हैं केवल भक्त जो उसको अनुभव हो रहा है वो उसी को पता है कि वो कितना आनंदित हो रहा है। वे भक्तों द्वारा व्यावहारिक रूप से आस्वाद्य होता है भले ही वे इस लोक में रहते हो वो प्रैक्टिकली वही जान सकता है जो इतना शुद्ध अवस्था में श्रवण कीर्तन के जल से अपनी भक्ति लता को सींचते हुए भगवत चरणों तक पहुंचाता है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो निरंतर सिंचन कार्य में लगे रहते हैं जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है वही भक्त इसका आस्वादन कर सकते हैं लेकिन इस काम में लगे भक्तों को सदैव सच्चेष्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम श्रवण कीर्तन करते रहेंगे और ये भक्ति लता डायरेक्ट से चली जाएगी बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें सावधान रहना चाहिए जिससे वह लता जो इतनी बड़ी हुई है छिन्न भिन्न ना हो जाए अतएव उसे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं श्रवण कीर्तन में लगे हुए हैं उनको सावधान रहना है और किन बातों से सावधान रहना है सबसे पहले तो नाम अपराध से जो अपराध है उनसे सावधान रहना है। क्यों पहली नंबर 1 बताते श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त के चरणों पर किए गए अपराध की तुलना उस प्रमत्त हाथी से की जाती है जो अत्यंत ही सुंदर उद्यान में घुस जाने पर उसे विनष्ट कर देता है। जैसे हमारी भक्ति लता अभी बिल्कुल छोटी सी नाजुक सी लता है और हाथी तो बड़े बड़े वृक्षों को उजाड़ कर फेंक देता है, तो हमारी लता के ऊपर यदि उस हाथी का पैर आ गया तो बचेगा क्या। उसी तरह से जब हम किसी भी भक्त के प्रति अपराध करते हैं, किसी शुद्ध भक्त के चरणों में अपराध के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए हम कितनी कठिन मेहनत कर रहे हैं और वो सारी की सारी मेहनत जो है वो एक शुद्ध भक्त के प्रति कोई अपराध करने से विनष्ट हो जाता है। तो इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए कि किसी भी भक्त के प्रति हमें अपराध नहीं करना है। कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या कर रहा है, वो देखना हमारा काम नहीं है। हमें तो ये देखना चाहिए कि हमको क्या करना है गुरु और कृष्ण की कृपा से। लेकिन इसमें ये भी सावधान रहना है कि हमें उनका उपहास नहीं करना है, उनकी निंदा नहीं करनी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जो भी करें हम उनको फॉलो करें। फॉलो करने के लिए हमें एक जीनियन भक्त जो कि गुरु साधु और शास्त्रों के सारे नियमों को फॉलो करता है, उन्हीं को उन्हीं के अंडर में रहकर हमें कार्य करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी भक्त कहलाने वाला कुछ भी बोलता है हम उसको फॉलो करते जाए, नहीं। लेकिन वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये उसकी अपनी पर्सनल बात है। गुरु और कृष्ण स्वयं ही निपटेंगे ना, भगवान देख रहे हैं ना, कृष्ण देख रहे हैं ना, हमें क्या जरूरत पड़ी है किसी की निंदा करने की। तो जो भी जैसा करता है हमें किसी के भी चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए, बल्कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि यदि हमारे द्वारा किसी का अपराध हो गया तो हमारी भक्ति का ये जो छोटा सा पौधा अभी उगा है वो विनष्ट हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, नंबर टू, मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों के चरणों पर ऐसे अपराध न करने के लिए अपने को सावधान रखे जिस प्रकार मनुष्य एक लता की रक्षा चारों ओर बार बनाकर रखता है। यानी कि एक तो अपराध नहीं करना है, दूसरा हर समय सावधान रहना है कि कहीं मुझसे कोई अपराध ना हो जाए। ऐसा नहीं अपराध होने के बाद पछताता रहे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं। ये एक गलती हमारी पूरी भक्ति को विनष्ट कर सकती है। इसलिए सदैव सावधान रहना चाहिए कि हमें किसी भी शुद्ध भक्त के चरणों में कोई अपराध नहीं करना है। जिस तरह से एक बाड़ बना के रखते हैं कि कोई भी हाथी अंदर ना आ सके, चारों ओर से सुरक्षा बना के रखते हैं ना, उसी तरह से हमें भी सुरक्षित रखना चाहिए अपने हृदय को, अपनी जीवा को, अपने सेंसेस को, कि भक्तों के अपराध की ओर नहीं देखना चाहिए। अपराध तो अपने देखने चाहिए कि मेरे अंदर तो कितने अपराध हैं और लोग तो फिर भी कितने शुद्ध हैं, मैं कितना अपराध कर रहा हूं। अपने अपराधों को देखना चाहिए, दूसरों के गुणों को देखना चाहिए। नंबर तीन, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसा हो सकता है कि सिंचाई के कारण कुछ खर पतवार भी उग आए, अतः जब तक ऐसे खर पतवार को समूल नष्ट न कर दिया जाए तब तक मुख्य लता या भक्ति योग की लता की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब किसान खेती करता है तो वो चावल का बीज डालता है और साथ में घास फूस भी उग जाती है, और वो जो है वो जो उसने खेती की हुई है उसको बढ़ने में प्रॉब्लम करती है। तो जो सावधान किसान होता है वो क्या करता है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, जो अनवांछित पौधे होते हैं, खर पतवार जिसको कहते हैं, उसको निकाल कर फेंक देता है। क्योंकि जब तक वो रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा वो हमारा रियल जो वास्तविक पौधा है, तो उसको उससे सावधान रहना चाहिए। और नंबर चार में बता रहे हैं कि वो कौन से अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। वास्तव में ये खर पतवार हैं भक्ति योग आत्मा को ब्रह्म में पृथक अस्तित्व के बिना लीन करना तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष के क्षेत्र में अन्य अनेक सांसारिक इच्छाएं, यानी भौतिक भोग, सॉरी खर पतवार है भौतिक भोग। संसार में हमें कुछ भौतिक इच्छाएं, भक्ति भी करते हैं, फिर भगवान को बोलते हैं कि ये भी प्राप्त हो जाए, ये भी प्राप्त हो जाए। अब भगवान तो हमारे दोस्त है ना, हम दोस्ती हो गई है, अब भगवान ये वाली मेरी इच्छा पूरी कर दो, भौतिक भोग। या फिर आत्मा को ब्रह्म में पृथक अस्तित्व के बिना लीन करना, यानी कि या फिर क्या होते, कुछ भक्ति योग में भी आगे बढ़ने के बाद उनको ऐसा लगता है कि मेरा और भगवान का अस्तित्व एक हो जाए, मैं मुझे दासत्व ना स्वीकार करना पड़े और मैं भगवान में समा जाऊं, लीन होना। और उससे भी उसके अलावा धर्म अर्थ काम और मोक्ष के क्षेत्र में अन्य अनेक सांसारिक इच्छाएं, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। अब भगवान तो है ना, हमें क्या लगता है भगवान तो मेरी बात सुनते हैं ना, मेरी बात भी मानते हैं, कृष्ण ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, लॉटरी लग जाए, ऐसा कर दो, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। भगवान की भक्ति में केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए कि बस कृष्ण आप कैसे मुझे रखते हो, यथा तथा व विदधात लंपटो, आप मुझे दर्शन देते हो या दर्शनों से वंचित रखकर मेरा हृदय तोड़ देते हो, आप मुझे अपनाते हो, हृदय से लगाते हो या मेरा तिरस्कार करते हो, आपकी इच्छा कृष्ण, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करो, मुझे आपसे केवल इतना ही चाहिए कि मुझे अपनी भक्ति अपनी सेवा में सदैव लगाए रखो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इन सारी इच्छाएं जो है वो क्या है, घर पतवार है। तो इनको क्या करना है, जैसे कुशल किसान होता है वो अनवांटेड प्लांट्स को निकाल कर फेंकता है, उसी तरह जो कुशल भक्त होता है वो इन समस्त अधिक इच्छाओं को निकाल कर हृदय से फेंक देता है। आगे के श्लोक प्रभुपाद जी नंबर 5 में, अन्य खर पतवार भी है यथा शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन। शास्त्रों में लिखा हुआ है लेकिन अब तो मैं महान भक्त हो गया ना, जैसे शास्त्रों में नहीं कहीं पर भी लिखा हुआ है कि कोई गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठकर होली खेले, नहीं लिखा हुआ है। अभी होली का त्यौहार चल रहा है लेकिन अब मैं तो बड़ा भक्त बन गया हूँ ना, मैं सारे शिष्यों को, श्रील प्रभुपाद जी ने नहीं किया, श्रील भक्तिपाद जी ने नहीं किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने नहीं किया। ये त्योहार हमारे खेलने का नहीं है, ये त्योहार भगवान के खेलने का है। इसलिए अब मैं भक्त बन गया हूँ ना, मुझे क्या करना है, मैं तो कोई भी शास्त्रों के नियमों को तोड़कर कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं अभी ये कार्य करना शुरू करूंगा। कोई भी कार्य जो शास्त्रों की अवहेलना करके किया जाता है वो नहीं करना है हमें। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि जो हमारे आचार्य गण हैं उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते, गुरु साधु और शास्त्र ने जिस बात की आज्ञा दी है वही कार्य करना है, जिस बात की आज्ञा नहीं दी है वो कार्य नहीं करना है। और यहाँ पर बताया वृथा की व्यवस्थाएं, व्यस्तताएं, मतलब वृथा की ऐसे कार्य, शास्त्र में क्या बताया गया है कि हमको श्रवण कीर्तन इत्यादि से भक्तों को है ना प्रसन्न करना चाहिए और है ना उसी तरह से इंगेज रहना चाहिए। लेकिन व्यर्थ की व्यवस्थाता है, मतलब ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स आयोजन करना जो ज्यादा उसमें 90% एकदम भौतिक होता है, ये होगा, सॉन्ग्स होंगे, नृत्य होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन जो प्योर भक्ति, जो प्योर डिवोशन जो शास्त्र हमें कहता है उससे दूर होगा, तो ये व्यर्थ की वृथा की व्यस्तताएं नहीं होनी चाहिए। और दूसरा पशु हत्या तथा भौतिक लाभ, कुछ लोग यज्ञ करते हैं, पशु हत्या करते हैं और भौतिक लाभ, और सबसे जो हानिकारक जो घर पतवार या फिर अनवांटेड प्लांट है वो है प्रतिष्ठा एवं सम्मान की लालसा। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो सम्मान की लालसा होती है कि मेरा सम्मान होना चाहिए हर जगह पर। इनको ऐसा लगता है जो भक्ति में आगे बढ़ते हैं, पहले तो अपने आप को दास समझते हैं लेकिन फिर आगे बढ़ के उनको लगता है कि भगवान क्या है, भगवान तो मेरा सम्मान भगवान के जैसा होना चाहिए। शिष्य अगर भगवान भक्त
गुरुकुल भगवान का सम्मान देते हैं तो ये शिष्य का ही कर्तव्य है, लेकिन गुरु को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा भी सम्मान होना चाहिए, मेरा आदर होना चाहिए। गुरु को हमेशा अपने आप को दास समझकर रहना चाहिए, अपना वेशभूषा ऐसा रखना चाहिए, अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि वो दास दिखे, उसको देखकर दिखना चाहिए कि ये दास है। जैसे इस्कॉन के जितने भी गुरुजन हैं, उनको देखकर, उनका बिहेवियर, उनका लाइफस्टाइल देखकर हमें लगता है कि ये दास भगवान के दास। लाभ पूजा प्रतिष्ठा भक्ति में सबसे ज्यादा गिराने वाली वस्तु होते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रतिष्ठा एवं सम्मान की लालसा ये खरपतवार है जिन्हें अपने हृदय से निकालना चाहिए। और नंबर 6, यदि पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जाती तो सिंचाई से केवल खरपतवारों की वृद्धि होती है, स्वस्थ लता ठिंगनी रह जाएगी जिससे उसमें भगवत प्रेम रूपी फल नहीं लग पाएगा। अभी क्या होगा, शुरू में आपने जितनी भगवान को प्राप्त करने के लिए श्रवण और कीर्तन से भक्ति लता को बढ़ा करने का प्रयास किया सो किया, आगे क्या आपको लग रहा है कि मेरी भक्ति लता आगे बढ़ रही है, लेकिन खर पतवार ही आगे बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहा है, भौतिक सम्मान की इच्छा बढ़ रही है, भौतिक इच्छाएं प्राप्त कर, इच्छाएं पूरी करने की इच्छाएं प्राप्त हो रही हैं, और है ना संसार में लाभ पूजा प्रतिष्ठा की है ना सिंचाई हो रही है, ये सब तो बाकी जो अनवांटेड प्लांट्स तो हैं वो ऊपर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक भक्ति लता है, जो भगवान के प्रेम को प्राप्त कराने वाली है, भगवत प्रेम रूपी जिसमें फल लगेगा, वो इतनी छोटी रह जाएगी कि उसमें रियल फल लगने वाला ही नहीं है। बस अभी अड़ोस पड़ोस की सारी जितनी भी लताएं हैं वो बढ़ती जाएंगी और हम भ्रम में रह जाएंगे कि हमारी भक्ति लता बढ़ रही है, जबकि वो क्या रह जाएगी, ठिगनी रह जाएगी। और नंबर 7 में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव भक्त को चाहिए कि प्रारंभ में ही विभिन्न खर पतवारों को समूल नष्ट कर दे, तभी मुख्य लता का स्वस्थ विकास हो सकेगा और वह ठिगनी नहीं रह जाएगी। स्टार्ट में ही जो भी हृदय के अंदर मतलब शास्त्रिक नियमों का उल्लंघन करने की यदि कभी भी बात आए कि मैं तो अभी बड़ा भक्त हो गया हूँ, मैं अगर अपने फॉलोअर्स को ये बताऊंगा तो वो तो मान लेंगे, तो ये उसी टाइम से हृदय में निकाल, भले मुझे उसमें तृप्ति होती है, मुझे आनंद आता है, लेकिन गुरु साधु और शास्त्र ने इस बात को नहीं कहा है तो मुझे ये नहीं करना, भले कितना ही लाभ दिखता हो उसमें, भौतिक है वो लाभ जो गुरु साधु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके प्राप्त किया है, भले हमको लग रहा होता है कि ये आध्यात्मिक ऐसा मैं करूंगा तो बहुत सारे चेले चपाटे मुझे प्राप्त हो जाएंगे क्योंकि उनको एंजॉय मिलेगा, उनको आनंद मिलेगा, तो ये आनंद प्राप्त करने के लिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक भी भक्त यदि आपने सिंसियर बना लिया तो काफी है, इतनी बड़ी कतारें बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर जैसे ही मन में आता है कि ये हटकर मुझे करना है, गुरु साधु और शास्त्रों के आदेश से, उसी टाइम पर क्या करना है, इन खर पतवारों को समूल नष्ट कर देना है, तभी मुख्य लता का स्वस्थ विकास हो सकेगा और वह ठिगनी नहीं रह जाएगी। नंबर 8, ऐसा करने पर भक्त को भगवत प्रेम रूपी फल चखने को मिलता है और वह अपने इसी जीवन में भगवान कृष्ण के साथ रह सकता है तथा पग पग पर भगवान के दर्शन कर सकता है। यदि हम इस तरह से अपने भक्ति लता को बढ़ाएंगे, ऐसा करने पर भक्त को भगवत प्रेम रूपी फल चखने को मिलता है। हम जितना सिंसियर होंगे, किससे, गुरु महाराज की आज्ञाओं से, शास्त्रों के आदेशों से और साधुओं के पदचिन्हों पर चलने से, जितना सिंसियर होंगे उतना ही हमारी भक्ति लता बीज का जो भक्ति लता का लता जो है वो ऊपर बढ़ेगी, और फिर जितना वो बढ़ेगी उससे उसी तरह से हमें भगवत भक्ति और भगवत प्रेम के फल को चखने का, आस्वादन करने का अवसर प्राप्त होगा। और भले ही हम भौतिक जगत में रहते हैं फिर भी कृष्ण के साथ
रहने का आस्वादन करेंगे, पग पग पर भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे, भगवान के साथ प्रेम का आस्वादन हम प्रत्येक क्षण प्राप्त करेंगे। जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है भगवान की सतत संगति में जीवन का सुख निरंतर भोगना, और जिसने इसका आस्वादन चख लिया है वह किसी और तरीके से भौतिक जगत के किसी क्षणिक भोग की कामना नहीं करता। जब एक बार आपको ये आनंद प्राप्त हो जाता है, क्या आनंद प्राप्त हो जाता है? भगवान के साथ भगवान का सतत संग और भगवान के साथ प्रेम का आस्वादन, यदि एक बार ये टेस्ट पता चल जाता है तो फिर संसारी सारे जितने भी सुख हैं वो क्षणिक होते हैं, उनकी तो जीव कल्पना भी नहीं करता। इसीलिए यमुनाचार्य कहते हैं, यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविन्दे नव नव रस रुच्युतम रन्तुमासीत, कि जब से मैंने कृष्ण के चरणों का आस्वादन किया है और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो नया नया रस का आस्वादन होता है, फिर उसके बाद भौतिक जितने भी वस्तुएं हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, निगरणीय लगती हैं। और यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 2.59 में, रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि एक बार जब वास्तविक रस का आस्वादन हो जाता है तो फिर भौतिक जितनी भी इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर योगी किस तरह से आत्म साक्षात्कार करते हैं उसके विषय में बताया गया, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वही आनंद वही आस्वादन हम तब कर सकते हैं जब भक्ति की लता को बढ़ाएंगे और ये लता जो है वो परिपक्व फल प्राप्त करके भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे और उसका रियल आस्वादन प्राप्त करेंगे, उसी से हमें आत्म साक्षात्कार होगा, वही आनंद प्राप्त होगा। और हमारे लिए ये प्रैक्टिकल है, हमारे लिए ये सुगम है, इसलिए हमें इसी रास्ते पर चलना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि भक्ति लता के इर्द गिर्द उगे हुए समस्त अनवांटेड प्लांट्स को काट कर मैं अपनी भक्ति लता को सिंचन कर सकूं और अंतिम लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकूं। हरे कृष्ण।